At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, SBS हिंदी पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाहिद जमील। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो दरअसल एक ऐसा विषय है जो आमतौर पर सामने आता नहीं है, लेकिन एल्डर अब्यूज का जो सब्जेक्ट है जिसमें ये बात सामने निकल करके आई है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो वृद्ध वर्ग हैं, उनके साथ निग्लेक्ट यानी अनदेखी का या फिर आर्थिक नियंत्रण का एक बड़ा किस्सा सामने खुल करके आ रहा है और हाल के सालों में आंकड़े दिखाते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आज साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं जाहिद जमील साहब। साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया दरअसल इस क्षेत्र में काफी काम कर रही है। वे बुजुर्गों के लिए ना ही केवल समर्थन मुहैया कराती है बल्कि उनके लिए साथ भी मुहैया कराती है। इस पर और चर्चा करेंगे जाहिद साहब से, लेकिन जाहिद साहब, सबसे पहले तो हम आपका SBS हिंदी में स्वागत करते हैं।
धन्यवाद।
आजकल ऑस्ट्रेलिया में ये निकल करके सामने आ रहा है कि बुजुर्गों के साथ हो रहा व्यवहार अच्छा नहीं है और उनके साथ दरअसल तिरस्कार का व्यवहार भी हो रहा है, तो किस तरह से आप समुदाय में देख रहे हैं, क्या चीजें हैं? क्योंकि आंकड़े सुझाते हैं कि बुजुर्गों के साथ होने वाला ऐसा व्यवहार या फिर उनके साथ होने वाली हिंसा में भी बढ़ोतरी देखी गई है।
हाँ शाली, तो देखिए, वो हम लोगों ने समा स्थापना की वो 2007 अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए। वैसे भारतीय और जो दूसरे दक्षिणी एशिया के प्रवासी हैं वो 1970 के बाद ऑस्ट्रेलिया आना शुरू हुए, तो उस समय खास तौर पर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह यहाँ आए और ये लोग लगभग 2000 तक, उनमें से काफी लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग बुजुर्गी तक पहुंच गए। तब हम लोग को ये एहसास हुआ कि हमारे बुजुर्गों की जो एज केयर नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में सीनियर्स को देखिए हर तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उनकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाएं हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो हम लोगों ने अपने साउथ एशियन एक कल्चर को, उनको भी, अपनी जो एज के रेजेंसीज हैं उनको ये बताया कि हमारी भी एक कॉल्ड कम्युनिटी है। हमने एक प्रोडक्टिविटी कमीशन की उन दिनों एज केयर इंक्वायरी हुई थी, उसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट की जो पब्लिश की गई, तो वो उस बैकग्राउंड में समा की स्थापना हुई। तो लेकिन आज का जो आपका जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील है और इसमें देखिए दो किस्म के बुजुर्ग हैं। एक वो बुजुर्ग हैं जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी गुजारी और वो यहाँ के सिस्टम को जानते हैं, और दूसरे वो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे यहाँ माइग्रेट हुए और उन्होंने फिर अपने जो माता पिता हैं उनको यहाँ बुलाया जो पहले से वृद्ध अवस्था तक पहुंच गए थे। लेकिन हकीकत ये है कि जो बुजुर्ग लंबी उम्र यहाँ गुजार कर रिटायरमेंट के बाद, उनकी मुश्किलात भी कम नहीं है। अक्सर होता यह है कि यहाँ पे बच्चे जब वर्कफोर्स में दाखिल हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपना जो घर है, जो पेरेंटल होम है, वो उसको छोड़ देते हैं, वो और अपना अलग से जाकर वो रहते हैं। तो उससे होता यह है कि जो बुजुर्ग हैं वो अकेले हो जाते हैं अपने ही घरों में, और फिर ये बच्चे अगर बुजुर्ग बच्चों के साथ भी रहते हैं तो ये बच्चे अपनी जिंदगी में बड़े बिजी होते हैं।
तो क्या आप साउथ एशिया समुदाय में, खासकर भारतीय समुदाय में ये देख रहे हैं कि जो आर्थिक नियंत्रण है, फाइनेंशियल कंट्रोल जिसे कहेंगे, वो भी एक समस्या है?
हाँ है। देखिए अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एक खास समस्या जो है, देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके केयरर बन सकते हैं, और वो केयरर उनकी देखभाल के लिए, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से केयरर अलाउंस मिलता है जो कि अच्छी रकम होती है। तो बहुत से बच्चे वो लोग जिनके बुजुर्ग पेरेंट्स उनके साथ हैं वो केयरर अलाउंस लेते हैं, लेकिन जो केयर उनको देनी चाहिए वो नहीं देते हैं, और ये लोग इन माँ बाप को जो दूसरी एक केयर सर्विसेज होती है, होम केयर है, नर्सिंग होम केयर है, तो वो भी नहीं लेने देते, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो केयरर अलाउंस है वो बंद हो जाता है। फिर जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं उनके साथ और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे उनके बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने लगते हैं उनको, क्योंकि वो डिमेंशिया की वजह से तो उनको वो अलाउड नहीं होता है, और फिर आपस में बच्चों में झगड़ा भी हो जाता है कि बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, उनकी पेंशन या जो दूसरे उनके पैसे हैं उनको बच्चे मिसयूज भी करते हैं। हाँ तो ये बातें तो होती हैं।
पर जाहिर सा इनके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है, ये सामने नहीं आती बहुत।
हाँ उसकी वजह ये है कि जो माँ बाप है वो कभी नहीं ये बताना चाहते कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उससे वो ये समझते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनका नाम खराब होगा। वो तो एज केयर असेसमेंट होता है, एज केयर असेसमेंट में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी मुश्किल कुछ नहीं बताते हैं, और कोई सोर्स नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चरल इश्यूज हैं, उसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के खिलाफ कभी कोई बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहते।
बात फिर वही हो जाती है कि घर की इज्जत और वैसे सब मुद्दे सामने आते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए कि एज केयर फैसिलिटीज के में दाखिले के लिए एक आसान तरीका होता है कि उसमें एक एकोमोडेशन बॉन्ड भरना होता है, जिसको कहते हैं, वो एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं रिफंडेबल एकोमोडेशन डिपॉजिट RAD। और जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो अक्सर अपना घर बेचकर रिफंडेबल एकोमोडेशन डिपॉजिट है वो भर देते हैं, और फिर वो अपनी एज केयर फैसिलिटीज में अपने जिंदगी के जो आखिरी वक्त है वो वहां गुजारते हैं। तो ये जो उसको कहते हैं रिफंडेबल है, तो ये रिफंड हो जाता है ये जो पैसा है जो आपको देना होता है, एंड विच कैन बी फ्रॉम 200,000-300,000 टू 500,000-600,000 तक हो सकता है।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ये फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो है हमारे जो बच्चे हैं वो ये इसको अलाउ नहीं करते हैं, वो उनको ये लगता है कि वो पैसा चला जाएगा या उस पैसे में कमी आ जाएगी, तो इसकी वजह से वो माँ बाप घरों में ही रहते हैं और उनको जो वो एज केयर नीड्स हैं यकीनन उस लेवल की नहीं मिल पाती हैं जो कि उनको एकोमोडेशन में मिल सकती है।
जी, पर जाहिर साहब मेरा एक और सवाल रहेगा, क्या भारतीय समुदाय से आने वाले बुजुर्गों के लिए उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से एज केयर फैसिलिटीज मौजूद हैं?
नहीं है, और पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन, तो हम लोग के मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स थी वो और भी वहाँ पे जरा रिलीजियस इश्यूज होते हैं कि भाई ये नमाज का इंतजाम हो, ये हो वो। अब से 5 साल पहले तक ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। और जो कल्चरल इश्यूज हैं, जो भारतीय सभी हम लोग सब वी लव आर करी फूड, तो वहाँ पर कहीं करी फूड नहीं मिलता था। और ये तमाम प्रॉब्लम्स थी और हैं। पिछले चंद सालों में हुआ ये है कि दूसरे जो एक टर्किश फैसिलिटी बनी है काफी बड़ी ऑबर्न में, तो वो मुस्लिम एज केयर फैसिलिटी है, लेकिन दूसरे भारतीयों के लिए, भारतीय जो मुसलमान हैं वो वहाँ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो टर्किश फूड सर्व करते हैं या लेबनीज फूड सर्व करते हैं, तो उनके लिए भी और बाकी भारतीयों के लिए वो फैसिलिटी अभी नहीं है।
तो एक सवाल जो मेरा आपसे रहेगा और जिसके साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी वार्तालाप को भी विराम देंगे, कि सरकार क्या कर सकती है और बच्चों को आप क्या सलाह देंगे?
देखिए, सरकार तो जहाँ तक ये एज केयर फैसिलिटीज का ताल्लुक है, ये एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, और उसमें जो सरकार की तरफ से जो ग्रांट्स आती हैं उसमें ये कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पर अगर $10 मिलियन लगने हैं एक एज केयर फैसिलिटी को बनाने के लिए, तो सरकार आपको $5 मिलियन देगी। $5 मिलियन आपको कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी से रेज करना होगा। वो एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जो सरकार फैसिलिटी के, जहां तक ये एज केयर फैसिलिटी के लिए सरकार 50% देती है, बाकी ये है कि बाकी लोकल फैसिलिटीज हैं, उसमें जो भारतीय ग्रुप्स हैं उन लोगों को अप्रोच करें, वहाँ पर जो अपनी कल्चरल नीड्स हैं, धार्मिक मामलात हैं, उनको बताएं कि भाई हमारे बुजुर्ग यहाँ आएंगे तो हमारी इन पर्टिकुलर इश्यूज हों, इनको केयर किया जाए। एट होम केयर है, इतनी सुविधाएं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है, उतनी सुविधा मेरे ख्याल से दूसरे, ज्यादातर दूसरे देशों में नहीं है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम लोग उस तरीके से बहुत लकी हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों तक जानकारी नहीं, तो जो जानकारी पहुंचाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वही जरूरी है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, सब लोगों को मालूम हो, बुजुर्गों को भी मालूम हो कि उनके क्या हुकूक हैं, उनके क्या, पर्टिकुलरली वो लोग जो यहाँ पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, उन्होंने यहाँ टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, तो फिर उनका ये हक बनता है कि वो उन बेनिफिट्स को लें, उन सुविधाओं से लाभ उठाएं उनका।
जाहिद साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया, और इतना वक्त निकाला आपने हमारे लिए उसके लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।